नमस्कार, आप देख रहे हैं इलेक्शन कैफे। मैं अश्विनी कुमार सिंह, आज के मेहमान सुमित सर, मयंक सर, पुनेंदु जी और पीडी सर, आप सभी का स्वागत है। आज की चर्चा फिर दक्षिण पे जा रही है हमारी, क्योंकि दक्षिण में एक बहुत ही कहें तो अभी बहुत एक शर्मिंदगी वाला एक मामला है कि एक नेता का करीब 2500 बताया जा रहा है, 2500 क्लिप्स, वीडियो क्लिप्स आए हैं जिसमें वो अलग अलग महिलाओं के साथ शोषण करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि उसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है, उसकी पुष्टि के लिए SIT के गठन किया गया है। वो नेता है GDS के, उनका नाम है प्रज्वल रमन्ना। वो पहले सांसद थे, इस बार सांसदी का चुनाव लड़ रहे हैं, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते हैं। और उनकी कहा यह जाए कि जिस दिन वो भागे, जिस दिन उनकी सीट के चुनाव था, उसी के रात अगले दिन वो वहां से देश छोड़ के जर्मनी भाग गए। और जब विवाद हुआ उसके बाद कर्नाटक की सरकार ने SIT का गठन किया, और अब वो विवाद बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि वीडियो क्लिप्स आए दिन मिल रही है, उस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई बीजेपी कांग्रेस की तरफ से, JDS की तरफ से, और आज JDS ने एक एक्स्ट्रा कदम उठाते हुए उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया है। ये तो बात हुई कि क्या घटनाक्रम रहा, लेकिन अब इसका पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या है, क्योंकि कांग्रेस के पास एक ऐसा मौका मिला है बीजेपी को घेरने के लिए। क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी अभी तक घेर रही थी कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस पास एक छोटा सा एज मिला है कर्नाटक के लिए खासकर, कि अगर वो कह सकती कि जो आपका अलायंस पार्टी है उसके नेता का 1000 से 2500 से ज्यादा क्लिप्स मिला है, तो आप ऐसे पार्टी के साथ क्यों गठबंधन कर रहे थे। और अब ये भी विवाद में आया है कि बीजेपी के नेता जो लोकल लेवल के नेता वो मना कर रहे थे, बोल रहे थे कि भाजपा इसके साथ ना जाए, JDS साथ, और टिकट ना दे रमन्ना, प्रज्वल रमन्ना खासकर, क्योंकि उन्हें पता था कि इनके बहुत सारे क्लिप्स हैं। इसमें पॉलिटिक्स और भी है। सुमित सर, पहले तो मैं ये कहूंगा, क्या आपको लगता है कि ये जो साउथ की 14 सीटें हैं, कर्नाटक की खासकर जो 14 सीटें बची हैं, उस पे इस फैक्टर के जरिए कि एक जिसका कथित तौर पर 2500 से ज्यादा वीडियो आए हैं, उसकी जांच चल रही है, वो पॉलिटिकली माइलेज बीजेपी के खिलाफ जाएगा, क्योंकि JDS और बीजेपी अलायंस में और कांग्रेस पास एज है कि वो इस मुद्दे के जरिए, महिलाओं के मुद्दे के जरिए कांग्रेस को, बीजेपी को घेर सके।
शुक्रिया अश्विनी, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही गंभीर मामला है ये। और कोई भी शख्स या कोई भी दल या कोई भी संस्था ऐसी खबर के साथ अपने आप को नहीं जुड़ते देखना चाहेगी। और इसीलिए जब जैसे ये खबर कल आई, परसों इनफैक्ट, तो तुरंत JDS ने भी और भारतीय जनता पार्टी ने भी पल्ला झाड़ा और कहा कि जांच होनी चाहिए, अगर प्रज्वल रेवन्ना गलत हैं तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस के SIT की भी मांग कर दी, SIT बन भी गई। जैसा कि आपने कहा, प्रज्वल रेवन्ना से आज JDS ने उसको पार्टी से सस्पेंड भी कर दिया, जबकि सिटिंग सांसद हैं, हासन सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार भी कैंडिडेट हैं, प्रधानमंत्री की रैली जो हुई थी उसमें भी वो मंच पे थे उनके साथ, उसके वोट मांगा गया था। लेकिन इन सबके बीच में हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि मामला शुरू कहां से हुआ। इस कहानी के जड़ में है प्रज्वल रेवन्ना का ड्राइवर। एक 1.5 साल पहले की घटना है ये, जून की। वो ड्राइवर जो 7-8 साल से रेवन्ना साहब, उनके पिताजी का ड्राइवर रहा, जो उनके बेटे के साथ प्रज्वल के साथ भी काम करता रहा, वो 7-8 साल तक परिवार में काम कर रहा था, किसी बात पे अनबन हो गई। वो उस
जमीन को
जब अनबन हुई उसके बाद उसके जब खुश करने की कोशिश की गई, उसको पेसिफाई करने की कोशिश की गई, तो उसने अपने लिए कुछ जमीन की मांग की। जो मैंने पढ़ा, जमीन का कुछ टुकड़ा उसको जो कंट्रोवर्सी में था उसके परिवार के साथ, वो उसने मांग की, जो शायद ये परिवार दिला नहीं पाया या देना नहीं चाहता था, जो भी कोई वजह रही हो। तो कुल मिलाकर वो ड्राइवर नाराज हो गया, और वो ड्राइवर जब से छिटका इस परिवार से, तब से ये इस बात की अटकलें थी कि ड्राइवर के पास कोई ऐसी चीजें हैं जो पब्लिक डोमेन में आ सकती हैं। पहली बार जब मई में पिछले साल विधानसभा चुनाव हो रहे थे कर्नाटक में, उसके पहले ये प्रज्वल रेवन्ना ही हाईकोर्ट पहुंचे कि मेरे खिलाफ अगर इस तरह की कोई वीडियो पब्लिक में आते हैं तो उस पर गैग लगाया जाए कि कोई चैनल, कोई अखबार, कोई पब्लिकेशन उसको छाप ना पाए। तो उन्होंने खुद ने कहा कि उनके खिलाफ की कोई कथित तौर पर CD, पिक्चर, तस्वीरें, वीडियोस जो हैं, जो जिसको कथित तौर पर अश्लील कैटेगरी में आते हैं, वो पब्लिक डोमेन में आने पर रोक लगाई जाए। ये हाईकोर्ट में वो पहुंचे थे, तब पब्लिक को पता लगा कि ऐसी कोई चीजें हैं। तो जब हमको पता लगा तो जाहिर तौर पर DK शिव कुमार को पता लगा, सिद्धारमैया को पता लगा, और फिर तो सरकार बदल गई, परिस्थितियां बदल गई। फिर वो ड्राइवर कैसे और क्यों इस तरफ से उस तरफ आया, ये अब कहानी को मुझे कहने की जरूरत नहीं है, समझदार को इशारा काफी है। तो वो ड्राइवर आज की तारीख में कहाँ है, मुझे हो सकता है कि ये सरकार की तरफ ही हो। आज की तारीख में वो जो तस्वीरें हैं करीब, क्योंकि 22 अप्रैल को 26 को चुनाव है, 22 अप्रैल की अभी मैं बात कर रहा हूँ, 2024 को कर्नाटक के कई पार्कों और कई सरकारी बसों में वो CDs और DVD और उसके क्लिप, वो क्या बोलते हैं उसको, डोंगल क्या बोलते हैं, पेन ड्राइव जो है वो पड़े मिले, मतलब अद्भुत किस्सा है कि पेन ड्राइव पड़े मिले, उसके 2 घंटे के बाद क्लिप्स वायरल होनी शुरू हो गई, जो शायद आप लोग के फोन में भी आई होंगी, यहाँ से घूमते हुए पत्रकार होने के नाते चीजें ऐसी आती रहती हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस पूरे मसले में ये मामला, क्योंकि 1 साल पुराना था, बीजेपी के स्थानीय नेता हैं वो लगातार बोलते रहे कि इस व्यक्ति को टिकट नहीं देना चाहिए, और उसके बावजूद भी देवेगौड़ा साहब के प्रेशर में कह लीजिए या रेवन परिवार का, देवेगौड़ा परिवार का प्रेशर कह लीजिए, उस व्यक्ति को टिकट दिया गया, वो चुनाव पे लड़ रहा है। और ये जानते हुए कि 2500-3000 क्लिप उसने 3-4 साल में 5 साल में बनाए हैं, जिस महिला के साथ मिला है उसके साथ वीडियोस बनाए, ऐसा कहा गया, जो कांग्रेस ने कल एलिगेशन लगाया, सुप्रिया श्रीनेत ने तो राक्षस शब्द का इस्तेमाल किया रेवन्ना के लिए, प्रज्वल रेवन्ना के लिए, और कहा कि ऐसे व्यक्ति ने तो जो परिवार में आया, काम करने वाली महिला आई हो, कुक आई हो, पार्टी कार्यकर्ता आई हो, सबके वीडियोज उसने बनाए और अपने फोन में अपने उसमें सेव करता गया और उनको ब्लैकमेल भी करता रहा तरह तरह से अलग अलग वक्त पे। तो ऐसी परिस्थिति में अब तो आपने पूछा कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा। जेडीएस जिन 3 सीटों पर चुनाव लड़ रही है उस पर चुनाव 26 तारीख को निपट गए। उसका जो असर होना था वो जेडीएस पर 22 तारीख की क्लिप आने के बाद, दिल्ली में भले ही खबर 26, 27, 28 को आई, पर कर्नाटक के चैनलों पर खबर 23 तारीख से चल रही थी, और अगर जो इम्पैक्ट पड़ना होगा तो पड़ चुका होगा जो कुछ जेडीएस के साथ हुआ होगा। लेकिन बची हुई 14 सीटें, क्योंकि बीजेपी ने पिछली बार 28 में से 25 सीटें कर्नाटक में जीती थी, तो बीजेपी को उस किले को बचाए रखने के लिए बहुत जरूरी है कि बुरा इम्पैक्ट ना हो। और कांग्रेस को लगता है कि इससे बेहतरीन मौका नहीं मिल सकता कि जब उसको और हम लोग बीजेपी से हम इस सिंहासन को छीन सकते हैं, इसीलिए डीके शिवकुमार, सिद्धारमैया पुरजोर तरीके से लग गए हैं कि हमको मैक्सिमम नुकसान पहुंचा देना है। नुकसान पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा नहीं पता, और इसीलिए आज अमित शाह ने जब उनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने छूटते ही कहा कि भाई पुलिस तो उनकी थी, सिद्धारमैया की सरकार कांग्रेस की सरकार बन गई है, उनकी पुलिस ने क्या किया, क्यों उसको जाने दिया। जो मैं कल भी कह रहा था अपने शो में कि भाई अगर वो नाक के नीचे से भाग गया तो वहां तो सरकार इनकी है, क्यों जाने दिया गया, क्या कोई अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि सिद्धारमैया उसी जेडीएस से निकल के आए हैं, सिद्धारमैया कांग्रेसी नहीं है मूलतः, सिद्धारमैया वहीं से निकल कर आए, देवेगौड़ा साहब के नंबर 2 हुआ करते थे उस पार्टी में, वहां से छोड़ के कांग्रेस में आए, तो क्या कोई अंडरस्टैंडिंग है। इस पर भी सवाल के जवाब कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को देने पड़ेंगे। बीजेपी तो घिरी घिरी है पर कांग्रेस बची हुई है, इसकी इस पर मुझे शक है कि कांग्रेस के दामन में छींटे तो आएंगे कि वो भाग कैसे गया।
मैंग सर, इसका एक ड्राइवर जो है उसका एक वीडियो और आया है, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने जो वीडियो था न्याय के लिए, मैं सबसे पहले गया था बीजेपी के एक नेता है गौड़ा साहब, उनके पास गया था
देवराज
गौड़ा, और उसने कहा कि मैंने न्याय की उम्मीद से इनके पास गया और मैंने कहा कि ये पेन ड्राइव है ये लीजिए, और इसमें जो भी करतूत है उसमें था। लेकिन अब बात क्या आई मीडिया में बाकी चल के कि ड्राइवर ने वीडियो जाके कांग्रेस को दे दिया। ड्राइवर का कहना है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ गौड़ा साहब को दिया था न्याय की उम्मीद में, ठीक है, वही पॉलिटिक्स की जड़ है। लोग कह रहे हैं कि भाई डीके के पास 6 महीने से पेन ड्राइव थी तो कांग्रेस ने करवाई क्यों नहीं की। ड्राइवर का कहना है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ बीजेपी नेता को दिया था, ना कि किसी और को दिया था, जब अगर 1 साल पुरानी बात है तो कांग्रेस बीजेपी की सरकार थी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि जैसे अब इम्प्लीकेशन जेडीएस पे तो नहीं है, ठीक है, जेडीएस तो मान लीजिए 3 सीटें पर लड़ रही है, क्या आपको लगता है कि ये जो संवेदनशील मुद्दे हैं जिसमें नारी शक्ति की बात बीजेपी करती है, मातृशक्ति की बात आज गृहमंत्री ने भी की है, ये उनके लिए इतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि ये जेडीएस का मामला है, प्रज्वल रमन्ना का मामला है, या प्रधानमंत्री उस मुद्दे को ऐसे टेक ओवर करेंगे कि उसका इम्पैक्ट बीजेपी को नहीं पड़ेगा, आपको नजर आता है ये?
कुछ कुछ चीज इस पूरे घटनाक्रम में बहुत ही अजीब है। एक तो टाइमिंग ऑफ रिलीज देखिए कितना, इलेक्शन के मिडल ऑफ इलेक्शन आया, एक बहुत सस्पेक्ट है ये। दूसरा चीज जो बहुत ही पूरा एपिसोड ही बहुत घिनौना है, तो उसमें ये सब कई लेयर है, एक तो टाइमिंग, दूसरा भाग जाना, देश छोड़ के भाग जाना, वो मेरे हिसाब से इंडिकेट करता है एडमिशन ऑफ गिल्ट, क्या दो चीज। अब इस सब के बीच एक कौम जो आजकल, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बहुत ही मुखर हो गया है, महिला वोटर्स, हम लोग बार बार उसका चर्चा करते हैं, वो कैसे परसीव करती हैं, और ये कोई नहीं कह सकता कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। जैसे मेंस वर्ल्ड एकदम से अभी इंडिया में एकदम से पोलराइज है, क्या महिलाओं में वैसा है क्या? अगर ऐसा है और इस पूरे घटनाक्रम में वो किसको दोष देती है? जैसे आप जेडीएस का ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो जेडीएस सबका ही ले रहा है, कभी कांग्रेस का ही ले रहा, कभी बीजेपी का ही ले रहा, तो उसका टेंट किस पे ट्रांसफर होगा ये पता नहीं है हमको। अभी फिलहाल वो जेडीएस, लेकिन इससे पहले इलेक्शन में 2019 में वो कांग्रेस के साथ था, असेंबली में सब अलग अलग लड़े थे, लेकिन जेडीएस कुमार स्वामी सबके सपोर्ट से सीएम बन चुके हैं। तो ये जो टेंट है जेडीएस के एमपी पे, और कुछ लोग बोल रहे हैं क्या कि ये शायद फैमिली के अंदर राइवलरी का भी मामला है, दोनों भाई के झगड़े का भी मामला है, ये हो सकता है कि एक ग्रुप ने इसको और हवा दे दिया हो। बहुत सारे लेयर हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो डिसाइसिव हो सकता है आगे के दौर के इलेक्शन के लिए, महिलाएं, देश की महिलाएं और महिला वोटर्स इसको कैसे परसीव करती हैं और उनका क्या रिएक्शन होता है, ये अभी पता नहीं है। ये एक्स फैक्टर है जो जिसको हम लोग को देखने की जरूरत है।
देखिए, असल में मैं तो इस पूरे मामले को जब मैं देख रहा था तो मुझे लगा कि इसकी भयावहता को महसूस करने की संवेदनशीलता हमारे पूरे समाज में नहीं बची है, न राजनीति में बची है, न मीडिया में बची है, न हमारे खाते पीते मिडिल क्लास मध्यवर्ग में बची है। हम तमाम लोग चीजों को घटनाओं की तरह, तमाशे की तरह लेने के आदि हो गए हैं। मतलब इस पूरी प्रक्रिया पर विचार कीजिए कि 2500 क्लिप कैसे तैयार हुए होंगे, जोर जबरदस्ती से डरा धमका के ब्लैकमेल बार बार किया जाता रहा, और क्या कर्नाटक में खबर छुपी थी, अब सबको पता है कि छुपी नहीं थी, उसके बावजूद एक आदमी राजनीति में अछूत नहीं बना, उसको स्वीकृति मिलती रही, अब उसका चुनाव में इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं तो बड़ा हैरान हूं कि इतने बड़े मुद्दे पे हमारे तमाम राजनीतिक दलों का जो स्टैंड रहा है, मतलब मैं इस बात को फिर से दोहराऊंगा कि जब संदेश खाली का मामला आया था तो एक मामूली गुंडा था और उसके खिलाफ कई लोगों ने बातें कही थी, उस समय बीजेपी ने अपनी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और स्मृति ईरानी ने मतलब 15 मिनट तक और उसको एक दूसरा कलर देने की भी कोशिश की थी। आप याद रखिए कि मुसलमान और हिंदू का मामला वहां बनाया गया जबकि महिलाओं के उत्पीड़न का मामला था। जेडीएस के मामले में तब शायद ममता और प्रियंका को जितना सक्रिय होना चाहिए था, जितना तीखे ढंग से बयान देना चाहिए था, वो नहीं देती नजर आई, बल्कि ये संदेह होता है जिस तरह संदेश खाली में शाहजहां शेख को बचाने की कोशिश हुई, छुपा रहा, अचानक प्रकट हुआ, तो उसको टीएमसी और ममता का संरक्षण किसी न किसी ढंग से हासिल था। क्या रेवन्ना को ऐसे किन्हीं लोगों का संरक्षण हासिल था, क्या बीजेपी को मालूम था, तो ये बात केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंची थी। जो बीजेपी के स्थानीय नेताओं के इंटरव्यू आ रहे हैं वो बोलते हैं कि हमने बताया था, इसके बावजूद ये लोग चुप क्यों रहे, कैसे रहे, ये कौन सी मातृशक्ति है जिसका हवाला अमित शाह दे रहे हैं, ये उनको पहले क्यों नहीं याद आई। और खाली यही मुद्दा नहीं है, मतलब कर्नाटक में जो गम और गुस्से के छींटे हैं वो कायदे से संदेश खाली तक जाने चाहिए और वो ब्रिजभूषण शरण सिंह तक भी आने चाहिए, जिनके खिलाफ कई तरह के आरोप लगे और देश की जानी मानी खिलाड़ियों ने लगाए, जिन पे आप गर्व करते थे उन्होंने लगाए, उन्होंने अपना पूरा करियर दांव पे लगा के लगाया। तो मैं बोल रहा हूं कि इस पूरे मामले में एक भयावह संवेदनहीनता जो हमारे पूरे समाज का, हमारी पूरी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है, उसकी एक परत छाई हुई है। हम सबकी चर्बी थोड़ी मोटी हो चुकी है, हम लोग हाँ इन मामलों को महिला उत्पीड़न के एक पॉलिटिकल मुद्दे की तरह देख रहे हैं, तो उसके पीछे भी यही मुद्दा। अब तक तो कायदे से कर्नाटक में इन तमाम उम्मीदवारों को जो इसके साथ खड़े थे उनको अपने घर में छुप जाना चाहिए था, उनको सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए थी, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं नहीं जानता हूं कि इसका चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, लेकिन ये घोर निंदनीय कृत्य है और जिसको ठीक से समझने के लिए हम लोगों को अपने पूरे भाषा संस्कार पे फिर से विचार करने की जरूरत है। पूर्णेंद्र,
नहीं, निसंदेह बहुत ही, जैसा पीडी सर ने कहा, बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है और राजनीति के लिहाज से ही नहीं, एक पूरे भारतीय समाज को एक झकझोरने वाला मुद्दा है। जिस तरह से आपने बताया कि 2900 से ज्यादा वो हुए, और वो साधारण आदमी नहीं है, वो सांसद है, दोबारा सांसद का चुनाव लड़ा है, एक पूर्व प्रधानमंत्री का पोता है और एक ऐसे परिवार से आता है, एक जो हाँ मुख्यमंत्री का भतीजा हुआ, भतीजा पूर्व मुख्यमंत्री का, तो बहुत रसूखदार परिवार है वहाँ की राजनीति में। देवगौड़ा साहब जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उसके पहले वहाँ मुख्यमंत्री भी रह चुके थे, और जो एक कास्ट इक्वेशंस जो कर्नाटक की है, वो लिंगायत या वोक्कालिगा, ये दो कम्युनिटीज है जिनका पॉलिटिकली वहां पे एक डोमिनेंस रहा है। तो वोक्कालिगा कम्युनिटी में देवगौड़ा और उनकी फैमिली का एक वर्चस्व रहा है, न सिर्फ देवगौड़ा साहब का बल्कि एसडी कुमार स्वामी भी, सिर्फ ऐसा नहीं कि एक पिता के पुत्र के तौर पे, व्यक्तिगत छवि भी उनकी एक बेहतर मानी जाती है, क्लीन इमेज मानी जाती है। लेकिन वो छवि देवगौड़ा साहब के जो दूसरे बेटे जो बड़े हैं एसडी कुमार स्वामी, एसडी रेवन्ना और उनके बेटे ये प्रज्वल, इनकी छवि उस तरह की नहीं है। और वही तकरार कई बार देखने को मिलती है। अभी हमने पिछले साल ही विधानसभा में देखा कि टिकटों को लेकर के कैसे एसडी रेवन्ना की वाइफ भी लड़ना चाहती थी, वो भी लड़ना चाहते थे, बेटा भी लड़ना चाहता था, जिसमें कि एसडी कुमार स्वामी ऐसे नहीं चाहते थे। और इस बार भी हसन के टिकट को लेकर भी कहा जाता है परिवार में उसको लेकर काफी तकरार थी। कुमार स्वामी नहीं चाहते थे कि ये टिकट प्रज्वल को दिया जाए, लेकिन बताया जाता है कि एसडी देवगौड़ा साहब ने इस पे अपना वीटो लगाया कि नहीं वो है। वो एक परिवार का जो वो होता है, तो उसको मतलब जो कहते हैं ना आपस में मनमुटाव है, उसको दूर करने का काम वो करते हैं। तो लेकिन ये मामला बहुत गंभीर है, और जैसा खबरें आ रही हैं कि ये अभी तुरंत का मामला नहीं है, पुराना मामला है। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने भी केंद्र नेतृत्व को ये समझाया था कि इस तरह की चीज़ें हैं, इनके साथ हमें हाथ मिलाना भारी पड़ सकता है। उसके बाद भी बीजेपी ने हाथ मिलाया, और खबरें कुछ ये हैं कि भाई शिवकुमार साहब या कांग्रेस की सरकार को भी चीज़ें पहले से पता थी, उस लिहाज से एक्शन नहीं लिया गया, तो उनके ऊपर भी सवाल उठता है। लेकिन बीजेपी के ऊपर इसलिए सवाल उठेगा इसमें कि बीजेपी ने तो कह दिया भाई ये हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, अगर मातृशक्ति और नारी शक्ति हम साथ में खड़े हैं, जो अगर कल्प्रिट है तो उसको दोषी करार दिया जाना चाहिए। लेकिन राजनीति में कई चीज़ें परसेप्शन से जुड़ी होती हैं। अगर उदयनिधि मारन कोई बयान देते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी उसके लिए कांग्रेस को कई बार घेर लेते हैं। कई बार आपको अपने एलायंस की कीमत आपको भी चुकानी पड़ती है, उसका जवाब आपको भी देना होता है। लेकिन ये बात भी सच्चाई है कि अलायंस में उत्तर से लेकर दक्षिण तक, जहां पर तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं, तमाम विचार पॉलिटिकल थॉट्स हैं, तो वहां पर अंतर विरोध होता है। गठबंधन में हो सकता है एक पार्टी बहुत ही सेकुलर थॉट की हो, कोई एक मिडिल ग्राउंड रखता हो, किसी का थॉट प्रोसेस कुछ अलग हो, तमाम मुद्दों को लेकर विभेद रहता है। जेडीयू और बीजेपी में कई थॉट उनके अलग हैं। नीतीश कुमार तमाम मुद्दों को लेकर कहते रहे हम सीए को नहीं लागू होने देंगे, और तमाम तरह के उनके इश्यूज रहते हैं। जब प्रधानमंत्री मोदी को उम्मीदवार बनाया गया था, मतलब उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री का बीजेपी ने उम्मीदवार, उस वजह से उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया अपना पुराना। तो राजनीति में कई बार आप वैचारिक समानता नहीं होने के बावजूद भी गठबंधन होता है, लेकिन दूसरी पार्टियों को ये मुद्दा बनाने का मौका मिलता है। उदयनिधि के बयान को या डीएमके के दूसरे ए राजा के बयान को बीजेपी स्कोर करती है, साउथ नहीं लेकिन नॉर्थ इंडिया में तो एक बड़ा स्कोर होता है उस मुद्दे को लेकर के, किस तरह से सनातन पे हमला हो रहा है, कांग्रेस चुप है। अब वही मौका कांग्रेस को मिला है पीडी सर, क्योंकि आज जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे कर्नाटक में, बेंगलोर में, हुबली में, और एक कांग्रेस उसको बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। क्योंकि जो पिछली बार जो चुनाव हुए थे, तो जो पहला जो चरण अभी हुआ है 14 सीटें का, उसमें तो कांग्रेस और जेडीएस का खाता खुला भी था, लेकिन जो दूसरे चरण में सीटें हैं वहां 14 की 14 बीजेपी ने जीती थी। और कर्नाटक में दक्षिण का एक ऐसा राज्य है जहां प्रधानमंत्री की लोकप्रियता बहुत हाई लेवल पे है, वो एक राज्य कर्नाटक है। शायद तमिलनाडु और केरल में वो उस तरह से मोदी वोट इनकैश नहीं करा सकते जो कर्नाटक में उनका एक उनके नाम पर वोट आते हैं। हमने एक सीएसडीएस का आंकड़ा भी देखा था कि 2019 में 37% जो बीजेपी वोटर्स थे उन्होंने मोदी के नाम पे वोट किया, लेकिन कर्नाटक में आंकड़ा 50% से ज्यादा था। तो वो उनकी लोकप्रियता है। अब ये सिर्फ बात, मुझे लगता है ये 14 सीटों तक ही मामला सीमित नहीं है, कि सिर्फ कर्नाटक तक का मामला नहीं है, बहुत ही गंभीर मामला है। एक पूर्व प्रधानमंत्री के परिवार से इस तरह के मतलब विभत्स चीजें सामने आना, ठीक है उसकी जांच होना बाकी है, लेकिन जो फिलहाल जो चीजें मीडिया में सामने आ रही हैं, एक बहुत आप इस लेवल पर होकर के और इस तरह की फैमिली को बिलोंग होकर इस तरह की चीजें होना, एक और एक पॉलिटिकल फैमिली में आप मतलब इस समय का जो एक डोमिनेंट अलायंस है आप उसके पार्टनर हो विधानसभा चुनाव में हार के बाद, क्योंकि बीजेपी अभी भी पिछले लोकसभा में तो उन्होंने साउथ में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, लेकिन उनकी एक लिमिटेशन है दक्षिण कर्नाटका में, खासकर जिसको हम वोक्कालिगा लैंड कहते हैं, ओल्ड मैसूर रीजन कहते हैं, वहां पे उनकी लिमिटेशंस है। बीजेपी कई बार कम वोट पाकर के भी वो कांग्रेस से ज्यादा उसको सीटें आई हैं, लेकिन अभी भी वो विधानसभा में उसको पूर्ण बहुमत पूरी तरह से नहीं आया, 110 तक वो गई है, लेकिन जो
113 का जो जादुई आंकड़ा है बीजेपी उसे कभी टच नहीं कर पाई। उसकी वजह है उसका जो ओल्ड मैसूरू रीजन है, जो वो कलिगालैंड में उसका एक कमजोर है, क्योंकि वो एक लिंगायत पार्टी मानी जाती है, जो उसके बड़े नेता हैं वो लिंगायत समाज से आते हैं, येदियुरप्पा साहब की जो फैमिली है या शेट्टार या दूसरे लोग जो रहे वो लिंगायत, बसवराज बोम्मई सारे लिंगायत रहे बीजेपी, तो वो उस वजह से उसको जेडीएस से हाथ मिलाना। और बीजेपी का जो एक मिशन भी है कि भाई 400 सीटें हमें लेना है, तो वो अलायंस के मामले में वो एक उसकी एक ज्यादा वो उदार है कि वो उसने नए जगह नए अलायंस बनाए। मुझे लगता है इस बार जैसा उम्मीद की जा रही थी बीजेपी बहुत ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, पिछली बार 436 पर लड़ी थी, अभी कुछ टिकटें उसके अनाउंस होना बाकी है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा उसका वो आंकड़ा नहीं जाएगा। मतलब आप बिहार में भी देखिए कि वो जेडीयू को लगभग उतनी सीट मिली है, तो उसने अलायंसेस को लेकर ज्यादा वो अपने आप का लचीला रुख दिखाया है, लेकिन इस मुद्दे से उसको कहीं ना कहीं धक्का मुझे लगता है लगा।
एक बात और मैं कहना चाह रहा था, वो शायद शुरू भी हो गया वहां पे सर, डीके शिव कुमार कांग्रेस के जो नेता है और उप मुख्यमंत्री जो है वो भी वो कालिंगा है, और वहां पर ये एलिगेशन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जब उन्होंने सस्पेंड किया पार्टी से प्रज्वल रेवन्ना को, तो कुमार स्वामी ने ये बात बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ये पूरी की पूरी साजिश डीके शिव कुमार की है, क्योंकि डीके शिव कुमार अपने आप को सबसे बड़ा वोकलिंगा लीडर के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं, और जब तक देवेगौड़ा साहब जिंदा है वो कभी सबसे बड़े नेता नहीं बन सकते हैं, तो वो उस पद पर अपने आप को देख रहे हैं कि वो 90 साल के हो गए हैं, उनकी उम्र अब ज्यादा एक्टिव नहीं बचे राजनीति में देवेगौड़ा साहब, तो डीके ये आरोप है कुमार स्वामी का कि डीके शिव कुमार उस वोकलिंगा कम्युनिटी के सबसे बड़ा नेता के तौर पर स्थापित होने के लिए देवेगौड़ा परिवार को बदनाम कर रहे हैं, ये उनकी राजनीतिक साजिश है। ये इस जो उन्होंने वोकलिंगा लिंगायत की बात की पूर्णेंदु से, उससे मुझे याद आया कि ये एक टॉकिंग पॉइंट और था आज का, जिस पर आज मतलब कर्नाटक की राजनीति में तेज हो गया।
एक चीज और ये है इसमें कि जैसा आप बोल रहे हैं ना वोकलिंगा, कांग्रेस की जो 135 सीटें आई हैं इस बार, कांग्रेस ने दक्षिण कर्नाटक में अच्छा परफॉर्मेंस किया है, जो वोकलिंगा लैंड आप जिसको कहते हैं, जबकि जब सिद्धारमैया पिछली बार भी जब 2018 में जब चुनाव हो रहे थे बहुत पॉपुलर लीडर थे, लेकिन कांग्रेस ने साउथ में बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया।
असल में वो कलिगा और लिंगायत के पैटर्न पे हम कर्नाटक की राजनीति को हमेशा से पढ़ते रहे, लेकिन जो जातियों का आयोग वहां बना, जिसने जातिगत जनगणना कराई और जिसके नतीजों को सार्वजनिक करने के खिलाफ दोनों हैं, लिंगायत भी हैं और वो कलिगा भी हैं, क्योंकि दोनों को पता चल रहा है कि यहाँ तो ओबीसी बहुत बड़ी तादाद में है जो दोनों को पीछे छोड़ देंगे, तो वो इक्वेशन बदल रहे हैं और नए ढंग से हो सकता है कर्नाटक की मथनी कोई नया मंथन करे, उसमें ये महिला वोटर की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है जो शायद इस मामले के बाद और मुखर हो। तो ये जो आप बता रहे थे कि कांग्रेस ने दक्षिण में वो कलिगा बेल्ट में भी बेहतर प्रदर्शन किया, उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि जो जातिगत जनगणना सामने नहीं आई उसके फैक्ट्स तो है मौजूद, वो अपने ढंग से वोटिंग पैटर्न को बदल रहे होंगे, ये मुझे लगता है।
सर इसमें एक चीज मैं क्योंकि चर्चा में मैं ये जानना चाह रहा था कि एक जो सब चुनाव जब चलता है ना, चुनाव के बीच में जब महिलाओं से जुड़े या कुछ और मामले आते हैं, उसको हम लोग भी मतलब हम स्पेसिफिकली समाज की बात कर रहा हूँ बहुत हल्के में लेते हैं, जैसे आप पीडी सर कह रहे थे ना ये सब चीजों को लेकर हमको यूज टू हो गए, हमको लगता ही नहीं कि कुछ अब फर्क पड़ता है। निर्भया ऐसे मामले होते थे देश में क्या हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि अब लोग भी ना यूज टू हो गए हर दिन की घटनाएं सुनकर, हर दिन इतना सुन सुन के, और खासकर जब पॉलिटिकल सिनेरियो में खासकर चुनाव के बीच में जब कुछ ऐसा होता है तो लोगों का ध्यान ही नहीं आता। भाई 2900 वीडियो क्लिप्स आए हैं तो हैरानी की बात है, सब सहमति से नहीं हो सकता, जांच का विषय कि कितना क्या है, लेकिन फिर भी ना 2900 वीडियो है, तो इसको इतना बड़े लेवल क्यों नहीं बनाया जा रहा है जो पॉलिटिकली बनना चाहिए।
मैं आपसे 100% असहमत हूं। अगर ये चर्चा का विषय नहीं होता, अगर ये हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता तो हम लोग क्यों इस पे शो कर रहे हैं, मैं अपनी बात कर रहा हूं, है ना, चर्चा का विषय है, ये चिंता में डालता है हमारे जो प्रबुद्ध समाज है, जो सो कॉल्ड नैरेटिव सेट करता है ये उसको परेशान कर रहा है, और ये हो सकता है कि आपको कर्नाटक की खबर को कर्नाटक से निकलकर दिल्ली आने में 3-4 दिन का समय लग गया, पर ऐसा नहीं है, ये चर्चा का विषय है, हर अखबारों में, हर फ्रंट पेज पर, हर यूट्यूब चैनल पे आप देखते आज चले जाइए, सबके हजारों की संख्या में व्यूज हैं, हजारों की संख्या में व्यू हिंदी चैनलों के, मैं कन्नड़ की बात ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये कर्नाटक से दूर का मामला, ये हिंदी भाषी प्रदेश के लोगों के लिए बिल्कुल अनजान सा मामला है, पर तब भी जनता में दिलचस्पी है। और इसलिए दिलचस्पी नहीं है कि वो गंदा वीडियो देखना चाहते हैं, ये दिलचस्पी इसलिए है कि कोई प्रधानमंत्री का पोता ऐसा कैसे कर सकता है। इतने रेनोड फैमिली का बच्चा जो सांसद है, जो देखने में पढ़ा लिखा बड़ा शालीन सा दिखाई देता है तस्वीरों में, वो इतनी अभद्रता कैसे कर सकता है? और वो आज से नहीं कर रहा है, 5-7 सालों से कर रहा था। और उस इल्जाम में उसके पिताजी का नाम भी है, HD रेवन्ना जो उनके पिताजी हैं प्रज्वल रेवन्ना के, उनका नाम भी है कि वो भी ये सब काम करते थे। जो एक महिला कंप्लेनेंट सामने आई है जिसकी बिना पर FIR हुई, उसने उनके पिता का नाम भी लिया है, FIR में दर्ज है उनका नाम भी, दोनों बाप बेटे का नाम FIR में है, वो विधायक है वो सांसद है। तो मेरा ये कहना है कि ये हम हर हिंदुस्तानी के लिए परेशानी करने वाली बात है। कल भी हमने चर्चा की, कल भी आपने ये कहा कि मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है। अरे मुद्दा बनने में समय लगता है, मुद्दा बनने के लिए वक्त चाहिए, 24 ही घंटे हैं ना। कल भी प्रोटेस्ट हुआ, आज भी प्रोटेस्ट हो रहा है, कल भी हमने चर्चा किस मुद्दे पे की थी, लेकिन ये मुद्दा बीच में आ गया था क्योंकि हमारे दिमाग में था बात की बात क्यों हो रही है। आज भी ये मुद्दा आ गया, आपने स्पेसिफिकली इस पे चर्चा की, तो चर्चा पे है, मुद्दा बना हुआ है, हिंदी अखबारों में, हिंदी चैनलों पर, हर जगह है ये। और ऐसा नहीं है कि हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, बिल्कुल फर्क पड़ता है। मेरे देखो रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि ये इतनी, जो आपने कहा ना कितना घिनौना, इतना वाहियात, इतनी खराब हरकत करने वाला, पर ये हमारा परसेप्शन है। हमको, हम सबको जब तक ये हमारा लीगल सिस्टम कहता है कि जब तक कि वो साबित ना हो जाए कि उसने गलत काम किया है, और तब तक हम उसको नहीं कह सकते हैं। पब्लिक डिबेट में आप उसको कुछ भी कह लें, सुप्रिया श्रीनिवास उसको कुछ भी कह लें, हम यहां बैठकर उनके बारे में कुछ भी कर लें, लेकिन आज भी वो गिल्टी प्रूवन नहीं हुआ है। जब तक कोर्ट उसको गिल्टी ना बोल दे, कोर्ट ये साबित ना कर दे कि उसने गलत काम किया, तब तक इतना तो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा। ये सबके साथ लागू होता है।
एक छोटा सा चीज बोलना चाहेंगे, ये जो पूरा मामला है एक बड़ा चीज इंडिकेट करता है, डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल फ्यूडलिज्म। अब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को हम वी ऑलवेज लुक अप टू, अरे बड़ा आदमी है ये, बड़ा आदमी है, और बहुत ज्यादा उसको सर पे चढ़ा लेते हैं और बहुत ज्यादा पावर दे देते हैं। और किसी को भी जैसे कि आप बहुत पावरफुल बना देते हैं तो उसका एब्यूज का चांसेस बहुत बढ़ जाता है। अब देखिए ट्रेडिशनली दादा चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चाचा चीफ मिनिस्टर, खुद MP, अब उसका पावर का कंसंट्रेशन देखिए। और उसी के साथ साथ ये तो सामने आ गया, बहुत सारे ऐसे मामले भी होंगे हमारे देश में जहाँ की इतने पावर ने और इस तरह के फ्यूडलिज्म कंसंट्रेशन ऑफ पावर ने कितना अब्यूज किया होगा लोगों का, हमको पता नहीं है। ये जो है हमको कि हमने जिता दिया तो मेरा राज हो गया, ये सब वोकेबलरी को हमको तुरंत चेंज करने की जरूरत है। इसके चलते अब ये जो फ्यूडलिज्म है इसको ध्वस्त करने की जरूरत है। और इस पे की साजिश हो रही है, कोई राइवल साजिश कर रहा है, कम से कम अभी तो नहीं बोले, ये इतना घिनौना पॉलिटिकल मतलब सेक्स स्कैंडल पहले भी हुए हैं लेकिन इतना विभत्स और इतना घिनौना शायद कभी नहीं हुआ है। और ऐसे में आप मतलब इतना पावर का अब्यूज करते हैं और अभी भी आपको साजिश दिख रहा है, अभी भी आपको इलेक्शन जीतने की जीत दिख रही है एकदम से।
वो एक जो बात आपने बोली ना मयंक जी, वो अगर आप इनोसेंट थे तो भागे क्यों? ये जो साबित करता है ना कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका था, तभी आप जांच से भाग गए, आपको लगा कि पकड़े गए तो नंगे हो जाएंगे, फांसी पर चढ़ा दिए जाएंगे, पब्लिक नहीं छोड़ेगी मुझे, इसीलिए जान बचाओ जर्मनी चले जाओ। ये जो आपने कहा ना ये बिल्कुल 100% सही है। अगर जरा सी भी प्रज्वल रेवन्ना के अंदर या उनके परिवार के अंदर ये हिम्मत होती तो प्रज्वल रेवन्ना सामने होते, SIT बन गई है, जांच में भागीदारी करते।
मैं ये कहना चाह रहा था उसमें सुमित सर कि जो भी बयान आए, चाहे उनके चाचा SD कुमार स्वामी, चाहे उनके पिता, किसी की तरफ से बयान, उसमें कहीं वो माफीनामा टाइप की जो बात होती ना, जो चेहरे पे दिखता है कि आपने गलती की, वो नहीं था सर। क्योंकि पिता बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है, मेरा बेटा जब चाहे तब आ जाए, चाचा बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो रही है, हमने पार्टी सस्पेंड कर दिया। भाई इसमें माफी कहाँ है? सस्पेंड करना तो बात की बात है, आप तो पत्ता साफ कर रहे हैं।
बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। और ये सब कर्नाटक की महिलाएं देख रही हैं जिनको 7 तारीख को वोट देने जाना है, वो इसको ध्यान में रख के बात करेंगे।
एक बार जो सुमित जी बोल रहे थे उसी को मैं थोड़ा बढ़ाना चाहूंगा कि इनकी प्रतिक्रिया होती है कि नहीं होती। देखिए तात्कालिक प्रतिक्रिया तुरंत पता नहीं चलती है, लेकिन आप जो कहते हैं और जिन पे चुप रहते हैं दोनों बरसों बरस याद रहता है। आपकी आवाजें आपका पीछा करती हैं। मतलब राजीव गांधी ने सिखों के मरने पर बड़ी नासमझी में बयान दे दिया था कि एक बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, वो बयान उनका पीछा नहीं छोड़ सका उनकी मृत्यु के बाद भी। मुलायम सिंह यादव बहुत खरे समाजवादी थे, भाषा का आंदोलन लड़ते रहे, जाति की लड़ाई लड़ी, लेकिन लड़के हैं गलती हो जाती है, ये बयान उनके साथ ऐसा चिपक गया कि वो छूटता नहीं है। आज भी महिलाओं के मुद्दे पे बात होती है तुरंत 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड याद आ जाती है। किसी लापरवाही में, किसी राजनीतिक फायदे में, किसी आरोप प्रत्यारोप में आप जो कहते हैं वो हवा में बचा रहता है, आपका पीछा करता रहता है और कभी आपसे उसका बदला निकाल लिया जाता है, तो कहना बड़ा मुश्किल है।
इसमें मुझे लगता है अश्विन की ये मुद्दा अभी क्या है कि अभी ये एक अभी डेवलपिंग स्टेज पे, जैसे ये हॉरर स्टोरीज और सामने आएंगे, डिटेलिंग जो सर्वाइवर्स हैं वो और सामने आएंगे, जैसे संदेश कली में धीरे धीरे उनकी स्टोरी सामने आना शुरू हुई, तो वो जो मुद्दा है उसकी गंभीरता लोगों को ज्यादा महसूस होती है। जब वो लोग सामने आएंगे प्रोटेस्ट में या जिस तरह से भी मीडिया के साथ या एसआईटीज के सामने, जब वो चीजें पता लगेंगी तो लोगों को, क्योंकि अभी तो बहुत तुरंत का मामला है, लोग ये भी सोचते हैं कि कई बार भाई चुनाव के दौरान चीजें आती हैं तो आपका दिमाग दूसरी तरफ भी जाता है कि पॉलिटिकल वो तो नहीं है, लेकिन जैसा मैंग सर ने उसको बखूबी बोला कि अगर जिस तरह से अचानक वो निकले, बस वोट हुआ और सीधे वो बाहर चले गए, जबकि उनका परिवार कह रहा है कि ये प्री शेड्यूल्ड उनका वो दौरा था, अचानक वो नहीं गए, तो कुछ तो शक सुबह खड़ा करता है, लेकिन जैसे जैसे चीजें हमें और पता लगेंगी तो इस मुद्दे की जो गंभीरता है और उसको लेकर के आपको आपको आप देखेंगे जितना बड़ा मामला है, हो सकता है पूरा देशव्यापी आपको एक प्रोटेस्ट देखने को भी मिले।
तो आज इसी नोट के साथ ये चर्चा को खत्म करते हैं, कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।